वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनम् गौदत्तिते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांशुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हा देवी का तू भरत जगदयाच जाते निपत्त भोगी वतो दुभटारते अस्या प्रसाद बुधस्य गणस्य कृत्वा गंधर्व के निज गणे गणनाम विधि अंग श्यामलिम छटाभिरभित मंदेक सैंदे वरम जाते जागुजरो सुसंग जगतम पत्तम निवासीनम हृदय सत्ताधर राधा संग भक्त्या विहीनापराधल चेत्वाच्य कामादितरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंद गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय तवैवास्मि तवैवास्मि न जिगामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मे मां शरणं त्यजे श्री राधा रमन जी के सामने अपनी कोटि कोटि हार्दिक पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। गुरु वैष्णव लोग मुझ पर प्रसन्न हो, उनकी कृपा बरसित हो। मैं कल चैतन्य महाप्रभु जी की करुणा के ऊपर में कुछ कह रहा था। न किति चरण की रात करुणयावतीर न करो समर्पित समुन्नत सां स्वभक्ति से हरि अपूर्व सुंदर द्योति कदंब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत में स्फुरत वस्त्र के मंदिर। इसी श्लोक की व्याख्या करते हैं, जैसे कि हमारे परम पूज्यपाद टीकाकारों ने किया है, विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी चैतन्य चरितामृत बंगला ग्रंथ होने पर भी मैं समझता हूं कि क्लिष्ट से क्लिष्ट जो सत्संदर्भ हैं उनसे कम नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसकी संस्कृत में टीका की, इसी से समझिए। तो मैं कल बतला रहा था कि चैतन्य महाप्रभु जी के अवदान का वैशिष्ट्य में कह रहा था। जितने भी अवतार आए हैं, जितने भी आचार्य लोग आए हैं, सबकी कृपा को क्रोड़ी फूट कर और अपना अधिकतर वैशिष्ट रखते हुए जगत को वो चीज दिया जो पहले एक कल पहले जो उन्होंने दिया था, इसके बीच में नहीं दिया। इसलिए करीम चिरा चिरात्मा ने कभी नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया था। बहुत काल ये नष्ट, काल में वो नष्ट हो गया था। सब हम भट्टाचार्य की महापुरुष की वंदना करते हुए कल उनके संबंध में, कृपा के संबंध में मैंने कुछ बतलाया। भक्त स्वभक्ति स्वयं, स्वभक्ति स्वयं मैंने अपनी भक्ति की संपत्ति जिसके द्वारा ब्रज प्रेम को अपने हृदय में लाया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। और स्वभक्ति स्वयं का यही बतलाया जो राधा जी की जो स्वयं अपनी भावनाएं हैं, भाव है, उसकी शोभा के रूप में ही है। उसी की जिसे विश्वनाथ वर्ष ठाकुर जी जिस रूप में बतला रहा हूं, श्रीमद भागवत के दशम स्कंध के एक श्लोक में भी उन्होंने कुछ कुछ इसका परिचय दिया। इससे पहले महाप्रभु जी की करुणा के संबंध में श्री नरोत्तम ठाकुर जी अपने हृदय की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। गौर ब्रज जने भेद नाही हई व भर जवासी धामेर स्वरूप पूरी दे नहीं हई व राधा रदासी करें। गौर ब्रज जने भेद नाही, जो लोग गौर और ब्रज को एक समझते हैं, अभिन्न, गौर को प्रच्छन्न वृंदावन बतलाएंगे, अभिन्न वृंदावन है। तो गौर के जो भक्त हैं परिकर हैं महाप्रभु जी के, और कृष्ण के जो परिकर हैं इनको अभिन्न समझो, अलग अलग मत समझो। ये पुरुष रूप में है, ललिता विशाखा इत्यादि दामोदर रामानंद प्रभु के रूप में जो आए हैं उनको एक देखो, इस चीज को समझो, उपलब्धि करो। हमारे पूर्वाचार्यों ने गौ गणोदेश दीपिका इत्यादि में और भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपने अपने ग्रंथों में ये वर्णन किया है। तो कहते हैं गौर ब्रज जने भेद न हरि, भेद मत देखना, अभिन्न देखना। हरि दे ब्रज वासी, तुम गौर में है, तुम ब्रज के परिकर हो जाओगे। हरि दे ब्रज वासी धामेर स्वरूप स्पुरी दे नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं अपने नवदीप धाम परिक्रमा की एक महत्वपूर्ण छोटी सी पुस्तक, उसमें लिखते हैं महाप्रभु जी को दास रस में सेवा करो, उनको कृष्ण जैसे रासलीला इत्यादि के माध्यम से उनकी सेवा मत करने जाओ, इनको दास रस से सेवा करो। जब दशरथ की पुष्टि होगी, इसमें सिद्धि होगी, तो ये राधा कृष्ण दोनों महाप्रभु जी राधा और कृष्ण दोनों के रूप में ही प्रतिबिंबित होने लग जाएंगे। रामानंद ने उनको पहले गौर रूप में देखा, सन्यासी रूप में, और पीछे जब उनकी कृपा वर्तित हुई, सारे ये तो राधा कृष्ण दोनों ही हैं, बल्कि इसे और कुछ देखा, रसराज महाभाव के रूप में उनको देखा, यही उनका वैशिष्ट है। महाप्रभु जी को जैसे कृष्ण की आराधना करते हैं उसमें मत करते जाओ, महाप्रभु जी का आदेश पालन करो, नहीं तो गौर नागरी बात का दोष आ जाएगा। हमारे गोस्वामी ने बहुत नागरी बात का विरोध किया है। गौर को ही नागर सजाकर स्वयं नागरी बनना ये गौर भक्ति के प्रतिकूल है, इसलिए उन्होंने जैसा आदेश दिया वैसा करेंगे। जब भक्ति परिपक्व हो जाएगी अपने आप यह धाम ब्रज के रूप में उदित होगा, राधा कुंड श्याम कुंड इत्यादि के रूप में ब्रज के रूप में उदित होगा और महाप्रभु राधा कृष्ण के रूप में उदित होगा। तब क्या होगा, धन स्वरूप स्फुरी हई बर जलवासी, तब वो यथार्थ में ब्रजवासी। धाम कृष्ण धाम कृष्ण नाम ये कुछ अपराध का विचार करते हैं, अपराधियों के हृदय में यदि अंकुरित नहीं होते कृष्ण नाम या कृष्ण धाम स्फुरित नहीं होते, कृष्ण नाम करे अपराधी का विचार, नाम ले ले, नाम लेने से भी उसका भाग है अंकुरित नहीं होता। इसलिए बहुत से हमारे गोस्वामी लोग, बहुत से लोग हमारे कृष्ण के भजन करने वाले बहुत दिनों तक यहाँ रह करके अंत में रसलाल का आस्वादन करने के लिए वृंदावन नवदीप धाम में गए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का आप लोगों ने सुना होगा, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी और हमारे सब पूर्वाचार्य लोग सब गए हैं। महाप्रभु जी सब पर कृपा, कल मैंने बतलाया अपाम और चंडा सबके पद उनकी कृपा है, जो सामने आया उसी को प्रेम दिया, पात्र भी दिया प्रेम भी दिया। इसी को भी सुना है चतुर्वर्ती ठाकुर जी माधुर्य का दम्बिनी में अपने लिखा है, महाप्रभु जी के कृपा को क्या बतलाया, प्रभु श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महामाधुर्य का दम्बिनी। उनकी कृपा को निरंकुश माधुर्य का दम्बिनी बतलाया, जिसके उदय होने पर यदि महाप्रभु की कृपा हो नव भक्ति का संचार होता है। नव भक्ति माने नवीन नवीन जो ब्रज की भक्ति है वो, अथवा नवभाग भक्ति, नव माने नौ, नवभाग भक्ति, हृदय में जीवों की स्फूर्ति होती है और उस कृपा के होने के पहले ही जैसे वर्षा होने के पहले सुशीतल हवा बहने लगती है, उस शीतल हवा से जैसे चारों तरफ में ताप दूर हो जाता है, ऐसे भक्तों के हृदय में जो ताप है काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य अपराध इत्यादि का, महाप्रभु की कृपा होने के पहले ही संचरित होने के पहले ही वो सब दूर हो जाती है। और जैसे बहुत दूर में मरुभूमि में एक पेड़ सूख रहा हो तो ये हवा जब भी संचरित होने को होती है तभी उस विश्वनाथ चतुर्वर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं उस मरुभूमि का एक पादप हूं, एक वृक्ष हूं जो सूख रहा हूं, गर्म से एकदम झुलस रहा हूं। वह महाप्रभु कृपा ऐसी जो दूर से संचरित होने पर दूर से ही उस सूखे हुए वृक्ष में भी सरसता ला देती है, मैं ऐसी महाप्रभु जी की अमृत बरसाने वाली, रस रूपी अमृत बरसाने वाली, मधुर या रस को बरसाने वाली, सरसाने वाली, मैं उस निरंकुश कृपा को पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। निरंकुश कृपा क्या है, कृष्ण ने एक शर्त लगाया, जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। सब जगह कुछ न कुछ शर्त है किंतु महाप्रभु जी की निरंकुश कृपा ने कोई भी शर्त उनके सामने बस जाना है, ये निरंकुश कृपा की है। व्याख्या करते हुए बतला रहे हैं एक श्लोक में श्रीमद्भागवत में बतला रहे हैं, अक्षमतानि फलमिदं न परम विदाम सख्यो अनुदेश यतोर वयस्य वक्त्रं ब्रजेत तोयो अनुदेनु दुष्टं दैवानुदीतं अनुरोक कथाक्षम। बड़ी सुंदर व्याख्या भव्य व्याख्या करते हैं, महाप्रभु की कृपा यदि न रहे ऐसी सुंदर व्याख्या कभी किसी भी संप्रदाय के लोगों ने, हम समझते हैं कि हजारों लोगों ने टीकाएं और व्याख्याएं की हैं किंतु बिना महाप्रभु की कृपा की ऐसी सुंदर व्याख्याएं कभी स्फूर्ति नहीं हो सकती। तो इस महाप्रभु जी की कृपा से सनातन गोस्वामी ने वैष्णव को सुनी। जी गोस्वामी ने वही संक्षिप्त वैष्णव तोषणी और यह सबका प्रसाद ग्रहण करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, मैं इन सब लोगों का प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं, जूठा जो कुछ रह गया। वैष्णव में कितनी दीनता होती है, दीनता का निदर्शन देखिए हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। कृष्ण कविराज गोस्वामी से हमारे उस समय के तदानंद वैष्णवों ने, रसिक वैष्णवों ने उनसे प्रार्थना की, आप महाप्रभु जी की लीलाओं का सरस ग्रंथन किया कर, हम लोग की इच्छा ये है, उसमें उनके भक्तों का भी चरित्र आ जाएगा, उनके परिकरों का भी आ जाएगा, इसे आप पूरा करके करें। तो आदेश लेने के लिए सब वैष्णवों के पास में गए जो उस समय उपस्थित थे। रूप सनातन जी तो उस समय नहीं थे और सब लोग नहीं थे, किंतु जो जो उपस्थित थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी दास और लोग भी सब उपस्थित थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी उसमें उपस्थित थे, उनके पास में आए, उनके चरणों में गिरे और आदेश मांगा, आप कृपा करें ये आप लोगों की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा और उनकी लीलाएं हमारे हृदय में स्फूर्ति हो और मैं उनका ग्रंथन करूं। गोपाल भट्ट जी ने कहा, मैं तुम्हें आदेश दूंगा किंतु एक शर्त है, हमारे जीवन चरित्र का और हमारी भक्ता का कहीं वर्णन करना। मेरे प्रेम में विवश होकर के श्री राधारमण जी स्वयं प्रकटित हुए हैं और सब जो महाप्रभु की कृपाएं हमारे ऊपर में हुई हैं, इसका कहीं उल्लेख मत करना, नहीं तो मैं अभिमान से मुक्त हो जाऊंगा। देखिए ऐसे महापुरुष हैं, महाप्रभु जी की सब प्रकार से ये कृपा प्राप्त हुई है और उनको उन्होंने मना किया, कही अच्छा आप कृपा करें हमारे ऊपर, मैं आपका आदेश पालन करने की भरसक चेष्टा करूंगा। इसी कारण से गोपाल भट्ट गोस्वामी का, प्रबोधानंद सरस्वती इत्यादि जी का या और कुछ जो हमारे महापुरुष लोग हो गए हैं, लोकनाथ दास गोस्वामी का, भोगगर्भ गोस्वामी का, ये बड़े दीन ही होकर के सुना पति सुनिए चेन तर रवि सही सुनता अमानी ना मान देना फिर सुनिय सका, ऐसे ये कीर्तन करते थे, भजन करते थे ऐसे लोग, जिनको स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति सब कुछ छोड़ देना सहज है, किंतु प्रतिष्ठा छोड़ना बड़ा भारी मुश्किल है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी ऐसा बताया, क्या वो प्रतिष्ठा का धृष्ट सपचरण मेघ जीवित, यह कपटता रूपी धृष्ट चंडाली जब तक हमारे हृदय में उदित रहेगी, नित्य करेगी, तब तक भक्ति सुकोमल आवृत्ति कभी भी हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो सकती, इसलिए इसको छोड़ने की पहले आवश्यकता, तब भजन प्रारंभ होगा भाई। जब तक लौकिक अभिमान किसी प्रकार का रहेगा तब तक नहीं, सब प्रकार के योग्यता उसमें रहने पर भी, सब प्रकार के उनमें योग्यता है, सब प्रकार से वो सर्वोत्तम है, फिर भी उनमें तिनाक की सुनीच तौरों की सहिष्णु अमानी और मानव तत्व यह रहता है। भक्ति का ये सहचर है जिसमें सिद्धा भक्ति रहेगी, ये गुण अपने आप रहेंगे, ये गुण रहेंगे तभी ये हर नाम संकीर्तन की स्फूर्ति होती है। तो ऐसे ये सब हमारे महाजन लोग थे, ये लोग हमारे हम लोगों के ऊपर में, सब लोगों के ऊपर में कृपा करें, सचमुच में हम लोग भी ऐसे ही हो सके, सब प्रकार का दंभ अभिमान ये सब दूर हो। शुद्ध भक्ति में महाप्रभु जी की दी हुई भक्ति में हम लोगों का भी अनुराग, तो वो इस श्लोक में बतला रहे हैं, ये वेणु गीत का प्रसंग है। अक्षमतां फलमिदम, गोपियां परोक्षम कृष्णस्य, कृष्ण की बंसी वादन का परोक्ष रूप में, परोक्ष रूप माने अवहित था अवलंबन कर कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में गोपियों को परक्रिया के रूप में ग्रहण किया गया है। गोपियां अपने इस पूर्व राग में किसी को यह नहीं बतलाना चाहती कृष्ण हमारे अत्यंत प्रियतम हैं, उनसे मेरा प्रेम हो गया है, उनकी नजर लग गई है, हम उनकी हो गई, ये बतलाना नहीं चाहती। यहां तक कि अपनी कृषि क्रिया से भी किसी भी बात से किसी प्रकार से इसको प्रकट नहीं करना चाहती थी। ये गुरुजन लोग इसको भांप लें और हमारे ऊपर में ताना कसें, वो नहीं चाहती थी। इसलिए सब प्रकार से अभी तक अपने हृदय में इन भावों को पोषण करती थी। किंतु आज कृष्ण गोचारण चले गए करने सखाओं के साथ में, भाव नेत्र से देख रही हैं, घर में बैठी बैठी गोपियों की कोटि कोटि जूठे हैं, स्वजाति आशय स्निग्ध, जिसका जिससे मेल है, जिसे अपने तरह का ही समान सजातीय सेवा बांटना है कृष्ण के प्रति, उनका एक एक दल घर के कोने में, घर के कहीं गुप्त स्थान पर मिल करके और कृष्ण के बंसी वादन की, कृष्ण की चर्चा करने। गोपियां कृष्ण को प्यार करती हैं किंतु इसको छिपाती हैं, कोई भाप में कोई न जान सके, इसलिए परोक्ष रूप में अवहित्थावलंबन करके किस ऐसे रूप में उसका वर्णन कर रही हैं कि यह प्रकट न हो जाए कि हम लोग कृष्ण को प्यार करते हैं। भक्ति को भी ऐसे ही गोपन रखने की जरूरत है, मैं भक्त हो गया, जहां यह भाव आया भक्ति का अभिमान हुआ तो भक्ति देवी अंतर्हित हो जाएंगे कर्पूर की भांति। तो गोपियां उनको छिपा रहे, उसको वर्णन कर रहे, कृष्ण की लीला कथाओं को, कृष्ण के वंशी स्वर को, निनाद की महिमा का वर्णन करके वो पागल हो गई और उसके साथ ही साथ में कृष्ण की के रूप इत्यादि की भी स्फूर्ति उनके हृदय में हो गई। वे उनका यह गुणगान करने लगी, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयोग इत्यादि के लिए कृष्ण के रूप का वर्णन करते 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 एकदम मुग्ध हो गए और स्मरदेश में प्रेम के आवेश में वर्णन नहीं कर सके। किंतु फिर भी जो नहीं चाहती हैं वो व्यक्त, जो गोपियां जो सुन रही हैं उनकी भी तो उसी प्रकार की समवासना है, इसलिए वो समझ जाती हैं, वो सुन करके कह रही हैं कि हमारी भी तो ऐसी ही भावना है कृष्ण के प्रति। इसी श्लोक में अक्षम काम फल निगम ये बतलाया है, आंखों आंख वालों का या आंखों का यही फल है, इतने आनंद में भर गई, मुग्ध हो गई कि आंखों का फल क्या है ये नहीं बोल सकी, आंखों का फल यही है। पहले उसको कह करके तब आंखों का फल यह होना चाहिए तो ये नहीं उन्होंने कहा, विवश होकर के कह रहे हैं आंखों का यही फल है। क्या फल है? न परम विदाम, आंखों का कोई इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा फल है हम नहीं जानते हैं। कृष्ण गोचारण करने के लिए गए, भाव की स्फूर्ति उनके हृदय में हो रही है, वो गोचारण में नहीं गई है, वो घर में बैठी दूसरी गोपियों से बात कर रही है और दूसरी कोई कह रही है सखी यहीं से देख रही है, मानो सब उनकी गोचारण कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बंसी वादन इत्यादि कर रहे हैं, कैसे उनकी आंखों की भंगी हो रही है, धूप भंगी इत्यादि वहीं से देख रहे हैं। कहिए सखी, हम नहीं जानती हैं कि आंखों का फल इसे दूसरा क्या हो सकता है। कृष्ण गोचारण करने के लिए गए हैं, सब सखाओं के द्वारा परिवेषित हैं, कोटि कोटि गायों के समूह को लेकर, धेनु पावन को लेकर गोचारण करने के लिए गए हैं। एक वन से दूसरे वन में प्रवेश कर रहे हैं, गाय भर भर बिदक रही हैं। कहते हैं बड़े प्रेम से कृष्ण जी सखा धीरे 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 चलो। कई भगवत चलते हैं तो बंसी के द्वारा इनको मोड़ लेते हैं, निरी निरी पानी पिलाना है तो कहते हैं निरी निरी, पानी पी करके जब चलती हैं इधर तो कहते तीरी तीरी, इनके शब्द बदले में गायें सब समझती हैं। यो तो गायें का भाई नहीं है, वेद की ऋचाएं गायें हैं, कृष्ण का पालन कर रहे हैं, वो सब कुछ जानती हैं। चीन में तत्व है सच्चिदानंद है, जब किंचित त्रिण गुरुमुखी कट मुखम गोष्ठे समस्तम हित सर्वानंद मुकुंद दैतम लीला अनुकूलम पर शास्त्रे रे मुहुर् मुहुर् निस्तंभितम ज्ञानत्या ब्रह्मादेव की सत्य हम तपो सर्व मया इदम बंदे। ब्रज का कुछ भी त्रिण लता गुल्म यहां तक कि बिच्छू साथ सभी सच्चिदानंद और कृष्ण लीला के अनुकूल है। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि कैसे अनुकूल है। राधा जी को तीव्र मान हुआ किसी कारण से, हेतु का हेतु, आज मान का उपशम नहीं हो रहा है, बहुत उन्होंने अन्न विनय किया किंतु आज का तो ऐसा मान था जी करे नहीं। राधा जी श्रीमती जी मुख मोड़ लिया और वहां से चल गई, सखियों के मनाने पर भी आज नहीं माने। थोड़ी देर जब आगे बढ़ी एक कृष्ण सर्प खावा सर उनको देख करके और ऐसे ही फंस गया, रास्ता में एकदम खड़ा और ऐसे फंस फंस गया, देखते एकदम देते मां नदी ने कहां उड़ गया है, लौटी और दौटी में आकर के कृष्ण की गोदी में गिर पड़ी, जिसकी कृष्ण कल्पना नहीं करते। लीलानुकूलम परम सभी सचिदानंद है। इस तरह से जब सांप और बिच्छुओं की तो ऐसी बात है तो तीन लता गुल्मों की तो बात क्या। तो इसलिए गाय सब समझती हैं, कोटि कोटि गौओं की समूह को लेकर के कृष्ण चल रहे हैं। अरे 9 लाख तो गाय नंद बाबा की, 11 लाख हमारे विश्वभानु महाराज की, ऐसे ऐसे सब कोटि कोटि गायों को लेकर के, उनको लेकर के एक वन से दूसरे वन में ले जाना सहज काम नहीं, किंतु कृष्ण अपने बंसी के रव से और अपने मधुर शब्दों से उनको वशीभूत किए हुए एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करा रहे हैं। साथ में कौन है, असंख्य गोप बालक हैं, उनके सखा लोग हैं, वयस्क वैश्यों से घिरे हुए हैं। फिर वक्तम जदा वक्तम प्रजेश सुतोयो अनुदेनी दुष्टम, और उस समय कृष्ण और बलदेव जी आ रहे हैं, ये बंसी बंसी के छिद्र को भर रहे हैं। पहले श्लोक में बंसी है लकड़ी, अंतःसार शून्य है, तो बलदेव जी ही बंसी बने हैं किंतु नवलीला में उसको अंतःसार शून्य है। यदि कोई अंतःसार शून्य रहेगा तो महान उत्तम भक्तों का भी संग पा करके वो वैसा का वैसा ही निरस बना रहेगा। कृष्ण अपने मधुर अध्याम को उसमें भर रहे हैं और वो विश्व को मत कर रही है किंतु स्वयं वही बंसी वही बांसी, इसलिए अंतर साथ शून्य नहीं होकर के कृष्ण के प्रति भक्ति प्रेम भाव होना चाहिए, गोपियों का अनुगमन वाला साधारण प्रेम। यह बंसी के द्वारा अनुदेन जुस्तम जुस्तम बतलाए, देख करके नहीं, वो तो पहले बतलाए ना आंखों का आगे, सफलता वही है जो इनके रूप को देखें। कब कृष्ण को चारण करने के लिए जा रहे हैं, सखाओं से घिरे हुए हैं, गायें चल रही हैं और अनुदेन जुस्तम ब्रजेश सुतयो, यहां पर कृष्ण और बलदेव जी जा रहे हैं। बलदेव जी का नाम लेने की आवश्यकता यहां नहीं थी,
किंतु भाव गोपन करने के लिए, कहीं ये प्रकट न हो जाए कि हम लोग कृष्ण पर अनुरक्त हैं, इसलिए और शिक्षा के लिए उन्होंने बलदेव जी को भी ले लिया। कृष्ण और बलदेव जी जा रहे हैं, जो वेणुवादन करते हुए जा रहे हैं, और सखाओं की तरफ में कटाक्ष से बंसी लेते हुए मुस्कुराते हुए और उनके तरफ में कटाक्ष पात करते हुए चले जा रहे हैं। यदि किसी ने यह देखा, देखा ही नहीं, नितीतम विशेष रूप से, निशेष रूप से पीतम, यदि इसका किसी ने पान किया, कैसे आंखों के द्वारा ही पान किया, कभी कान के द्वारा पान करते हैं, कभी मुख के द्वारा पान करते हैं, तो इस तरह से नितीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, देखते हैं ये देखा उनका जीवन सफल है। दूसरा इसमें आप बताते हैं प्रजेय से सुखयो, कौन देख रहा है, गोपियां बलदेव जी को किस रूप में देखती हैं, जय के रूप में देखती हैं, गुरु बुद्धि से उनको प्रणाम करती हैं और वो भी उनको आशीर्वाद देते हैं, दूर से अपने नेत्रों से ही उनको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यहां पर गोपियां जो उनको देख रही हैं, अनुदेनु जुष्टम ब्रजेश सुतयो, ब्रजेश सुत जो दो हैं कृष्ण और राम, उनमें जो पीछे अनु पीछे बेनु जुष्टम, बेनु का जो आस्वादन करते हुए जो जा रहे हैं, पीछे पीछे जो हैं, आगे आगे बलदेव प्रभु जी जा रहे हैं और पीछे कौन चल रहे हैं, कृष्ण जो अपने अथर पर मुरली लिए थे, इनका जो कटाक्ष है मोक्ष, यदि नहीं देखा जीवन वृथा है, आंखें वृथा है, मोर पंख की भांति है। चलो सखी जल्दी से चले देखें, जिसना सब सखी ठाकुर जी का, चलो जल्दी से देखें, देखें नहीं पीते पिए अधरामृत पिए। अरे ये खबरदार ना मत लो, अभी सुन रही होंगी हमारी ससुर सास ये सब लोग होंगे, गुरुजन लोग सुन रही होंगी या सुन रहे होंगे, मत कहो। कभी क्या करेंगे, करेंगे क्या, हमारी नंदा जी तो देखती हैं सुनती हैं, जितनी बाधाएं हम लोगों के लिए ही हैं वो क्यों सुनती हैं, चलो जो होगा तो देखेंगे, तो चलो दूर से देखेंगे, किंतु नीतम हमारे लिए संभव नहीं है, पीना हमारे लिए संभव नहीं। अरे चलो तो देखो जो क्या होता है, उस बंसी नाद का ऐसा ही प्रभाव है, कृष्ण के मुखार बिंद का ऐसा ही प्रभाव है, काश्यम से पदायत कल्प देनी, कल्पदायत देनी बिंद, इसे तो गो द्रीज द्रुम मृग पुलकांड विभ्रम, सभी अपने अपने धर्मों को छोड़ करके विपरीत धर्म का आचरण करने लगते हैं। जमुना जी जो चलती हैं वो स्थिर हो जाती हैं, हवा स्थिर हो जाती है, चलने वाले जो हैं वो जड़ हो जाते हैं और जड़ भी चेतन का व्यवहार है। इनकी बंसी की निनाद और उनका रूप सुन करके हमारी तो बात भी क्या है, पेड़ों से अश्रु धारा होने लगती है, पक्षी जो चलने वाले हैं स्थिर होकर के मौन होकर के रह जाते हैं, सब चीज की धारा ही बदल जाती है। तो हमारी ये धारा जो बदल गई, हमारा जो भाव बदल गया, अपने पतियों को छोड़कर के यहां ले जा रहे हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, वहां पर वो पतला रहे हैं, तो वही यहां पर ये कह रहे हैं, चलो तो सुनो तो देखो तो, जो कराना होगा वो बंसी करा लेगी। इसलिए यहां पर कहते हैं जो पीछे जो जा रहे हैं कृष्णचंद्र, अधरों पर मुरली लिए थे, उसमें अपने अधरामृत को लगा करके, तो उस समय में कृष्ण के आंखों से जो उनका कटाक्ष मोक्ष हो रहा है, जो देख रहे हैं इसको जो दर्शन किया, उसी की यथार्थ में सफल। यहां पर एक विचार और है, ब्रजेश सुतयो, बलदेव जी के लिए ये कहा गया कहां तब संगत है, अरे हां संगत यद्यपि कृष्ण के लिए तो यह कहा जाता है जिस समय में वो मथुरा में आविर्भूत हुए, वे प्रकट हुए समस्त प्रभा पत्नी के रूप में शत्रुभुज रूप में। उसी समय में गोकुल में जसोदा मैया के गर्भ से कृष्ण प्रकटित हुए एक ही काल, पीछे से जोग माया जी ने जन्म ग्रहण किया। जिस समय में वसुदेव जी ने और देवकी जी ने प्रार्थना की आप बच्चे बन जाइए शिशु बहुआ, साथ ही साथ में गोकुल वाले कृष्ण यहां पर पहुंच गए और अपने रूप में उनको ग्रहण कर लिया, मिला लिया, उसी को बस देव वहां पर रखा है। श्रीमद् भागवत में ऐसे हजारों प्रसंग हैं जिसे ये प्रतीत होता है कि परीक्षित महाराज को प्रसन्न करने के लिए ही उन्होंने जदा कदा कहीं कृष्ण को वासुदेव पुत्र कहा, वसुदेव पुत्र कहा, देवकी नंदन इत्यादि कहा, किंतु अपने मन का भाव उनका यही है कि वो नंद नंदन है, यशोदा नंदन है। इसलिए जन्म के प्रसंग के बाद में नंद के घर में जब उत्सव हुआ वहां पर उन्होंने आत्मज उत्पन्ने बतलाया, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता साधु महामना, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, उनका वहां पर संस्कार कराया। क्या जात का संस्कार किया, जात कर्म किसको कहते हैं, नारी छेदन इत्यादि का नाम जात कर्म है। कृष्ण की यहां नर्मद लीला हुई, वहां पर भगवत तत्व नारायण इत्यादि वासुदेव कृष्ण वहां पर प्रकट हुए, जन्म की लीला वहां पर मथुरा में नहीं है, किंतु यहां पर जन्म की लीला है कृष्ण की। केवल यही नहीं, जब कंस ने उस लड़की को पकड़ा है और पत्थर पर पटकना चाहा, वो अष्टभुजा दुर्गा के रूप में ऊपर उड़ गई और घाजे रहे कंस तेरे मारने वाला तो अन्यत्र कहीं प्रकट हो गया। उसमें सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा अदृश्यत अनुजा विष्णु, विष्णु की जो अनुजा है वो वहां पर अदृश्य हो गई। यहां पर विष्णु माने कृष्ण, कृष्ण की अनुजा कौन थी, मथुरा में कौन सी उनकी अनुजा पैदा हुई, यदि कहा सुभद्रा जी हुई तो बहुत पीछे की बात है, वो तो साथ ही साथ जिसको वो ले आए थे कहां से, मथुरा से तो लाए नहीं, वो तो गोकुल से ले आए थे उसे, तो अनुजा कैसे हो गई यदि कृष्ण की वो बहन नहीं है तो। इसलिए वो कृष्ण की बहन है, इसलिए कृष्ण नंद बाबा के ही पुत्र है। नौमुझते अप्र बपु से पशु पांग जाय, पशु का अंग जाय, पशु पशुओं को पालन करने वाले नंद बाबा के ये पुत्र हैं। ये ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के गुरु हैं ना, ये झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के मन की बात नहीं कहेंगे, इसलिए उन्होंने कह दिया जयते अधिकम जन्म ना ब्रज, मथुरा में नहीं, कहां जन्म हुआ उनका, जन्म ना ब्रज, ब्रज में जन्म से। आज ये वैकुंठपुरी क्या द्वारकापुरी और मथुरा इत्यादि से ही अधिक ये सुशोभित हो रही है, जहां पर लक्ष्मी कुंजों में झाड़ू देती है। इसलिए कृष्ण का यहां पर गोकुल में जन्म तो अभी संवाद सत्य है, इसमें नम नचु का कोई प्रश्न ही नहीं है, बल्कि अंत में उन्होंने कह भी दिया हाँ देवकी जन्म भादव, ये बाद है देव की जन्म बाद। उन्होंने वो जगत को के अधर्म इत्यादि को दूर करने के लिए आती, ये भी बाद है इसलिए नहीं आए, वो तो गोपी प्रेमास्वादन करने के लिए आए, भक्त विनोदनाथ था, भक्त के विनोद के लिए वो आए थे, भक्तों के विनोद के लिए, क्रीड़ा के लिए आए थे। और असुरों का संहार तो अपने महाविष्णु विष्णु के अवतारों के द्वारा भी ये युग धर्म परिवर्तन इत्यादि सब ये कर सकते थे, इसलिए इसके लिए नहीं आए। इसलिए देवकी जन्म बादो ये बाघ स्वरूप है कहा जाता है ऐसा, किंतु यथार्थ में नहीं बोलते हैं। बलदेव जी के लिए यहाँ पर प्रजेश सुतयो, ब्रजेश के नंद नंद के ये दोनों पुत्र इस रूप में कि ये हमारे वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, जिसमें वसुदेव जी कट चुकाने के लिए कंस के पास में गए, नंद बाबा गए वसुदेव, वहां पर वसुदेव जी से मिले, आया ठीक है तुम आए जल्दी से चले जाओ। उस समय मैं पूछा था उन्होंने, हमारे वसुदेव जी ने पूछा नंद बाबा से, देखो हमारा एक लड़का है, कृष्ण के लिए नहीं कहा मैं तो कर्म हो जाए, कृष्ण के लिए नहीं कहा, आज हमारा एक लड़का रोहिणी के साथ वहां पर गया है, तुम जन्म से हुआ उसका जन्म भी तुम्हारे नहीं हुआ, वो हमको कभी पिता के रूप में उसने देखा नहीं, वो आप ही को पिता और जसोदा कभी मैया जा रही को मैया करता है, वो जानता कि मैं नहीं कहा, और आप ही उसे पलकों के समान जैसे आंखों की रक्षा करते हैं इस प्रकार से आप लोग उसका पालन पोषण करते हैं। इसके अतिरिक्त भी जब कृष्ण के कहने से बलदेव प्रभु जी, बलदेव जी ने कहा कृष्ण को जो चलो हम दोनों भाई चलें, अरे एक बार तो ब्रज में चलें, ब्रज को तो हम बेच करके नहीं आए हैं, चलो ब्रज में चलें, तुम ब्रज को छोड़ करके आया और प्रतिज्ञा कराया, प्रतिज्ञा करके आया कि कल भी हम लौटेंगे, कल नहीं तो परसों जरूर लौट आएंगे, किंतु नहीं लौटे। अच्छा ठीक है तुम नहीं लौटे, एक दिन के लिए तो जा सकते हो, चलो एक बार घूमे। कृष्ण नहीं आए, उद्धव जी को भेजा, अपनी पत्नी देवी संदेश दिया, बलदेव जी ने कहा, रोहिणी मैया ने भी कहा, गोपियों को संदेश के द्वारा दूसरे आदमी के पत्नी के द्वारा तुम सांत्वना देना चाहते हो, जब तक तुम खुद नहीं जाओगे तब तक उनकी सांत्वना नहीं होगी। कृष्ण रोने लग गए, अजय तुम धूर्त हो बलदेव जी, धूर्त हो तुम, रोने क्यों लगे, चलने में क्या है। कृष्ण इसका उत्तर कुछ नहीं दे सके, उनकी तीस उनके हृदय में दिए ये किसी से कहीं भी नहीं जा सकती। फिर बलदेव जी ने उनको कहा चल अब चलो, उद्धव जी से तो संतना नहीं हुई, तुम चलो। ठीक फिर नहीं आए तो बलदेव प्रभु जी कहे तुम नहीं जाते हो तो मैं खुद जाता। तो वहां पर उन्होंने बतलाया है पितरो, मैंने दोनों को अभिवादन किया है, माता और पिता को, माता पिता के रूप में नंद बाबा यशोदा जी का अभिवादन किया है, श्रीमद् भागवत में ऐसा उल्लेख। क्यों? इसलिए कि बलदेव प्रभु जी नंद बाबा से कह रहे हैं, जिसमें मथुरा में ये गए थे कर देने के लिए, उसी समय में बलदेव जी का कंस मारा गया है, उसका संस्कार भी कर दिया गया, नंद बाबा वहीं पर पड़ाव डाले बैठे हैं अंबिका बनने, सोच रहे अब कृष्ण आएगा बलदेव आएंगे। बहुत विलंब हो गया, एक दिन नहीं दूसरे दिन भी नहीं आए। तीसरे दिन शाम को जब अंधकार हो रहा है, बड़ी मुश्किल से मिलने के लिए आए, तो बज गया है और 15-10 मिनट, बस शाम हो गई, अंधकार हो गया, अपलक नेत्र से देख रहे हैं, अजी वसुदेव तो भूल गया, जदुवंशी लोग भूल गए, कृष्ण और बलदेव भी हमें भूलते, गला रूप धोया है। उसी समय में देखा जी कृष्ण बलदेव मानो क्षिप करके आए, बाबा का ऐसा रूप देख करके उनके दाएं और बाएं जंगे पर बैठ गए, कहते तुम भी भूल गए और तुम भी नहीं आ रहे, क्या मथुरा वृंदावन लौटने की इच्छा नहीं। उस समय में बलदेव जी कह रहे हैं, मैं कृष्ण को और आपको छोड़कर के कदापि मथुरा में नहीं जाता। बाबा तो वही है ना, बाबा तो बहुत प्रकार के पिता होते हैं जो पालन करता है, राजा भी पिता होता है, जन्मदाता भी पिता है, इस तरह से पिता तो बहुत है। यहाँ तक कि ससुर भी पिता है जिसके कन्या से विवाह किया, ये सभी पिता है। और उपनेता जो उपनयन देता है वो भी पिता है, किंतु जिस पिता ने पुत्र को पाला नहीं और उसे छोड़ दिया, त्याग दिया, वो पिता पिता कैसे हो सकता है? आप ही हमारे पिता हैं। यद्यपि आप कहते हैं कि बसते हमारे पिता हैं, किंतु मैं उनको नहीं, आप ही को पिता मानता हूं। उन्होंने तो मेरा पालन नहीं किया, पालन को आपने किया। भरपूर पिता का जो जो प्रेम होता है आपने दिया। मैं कृष्ण को छोड़कर कन्हैया को छोड़कर के आपको छोड़कर के कभी कभी नहीं जा सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये ब्रज के सभी लोग जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता, ये ब्रजेश सुतन नहीं है, अर्थात ये नंद बाबा के। इसलिए यहां पर जो गोपियों ने कहा ब्रजेश सुतयो